गए। आजाद को देखते ही वह रईस चौंक कर खड़ा हो गया और उनकी तरफ देख कर बोला, वल्लाह आपसे मिलने का बहुत शौक था। शुक्र है कि घर बैठे मुराद पूरी हुई। फरमाइए, आपकी क्या खिदमत करूं? बहार बेगम, यह सब दिखाने की बातें हैं। किसी से दो हाथी मांगे, किसी से दो चार घोड़े, कहीं से सिपाही आए, कहीं से बर्छी बरदार। लो साहब, बारात आई है। मांगेतांगे की बारात से फायदा? खोजी ने जब देखा कि आजाद की चारों तरफ तारीफ हो रही है और हमें कोई नहीं पूछता, तो बहुत झल्लाए और कुल शहर के अफीमचियों को जमा करके उन्होंने भी जलसा किया और यों स्पीच दी, भाइयों, रीट का ख्याल है कि अफीम खाकर आदमी किसी काम का नहीं रहता। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत। मैंने रूम की लड़ाई में जैसे जैसे काम किए, उन पर बड़े से बड़ा सिपाही भी नाज कर सकता है। मैंने अकेले दो दो लाख आदमियों का मुकाबला किया है। तोपों के सामने बेधड़क चला गया हूं। बड़े बड़े पहलवानों को नीचा दिखा दिया है। और मैं वह आदमी हूं जिसके यहां 70 पुश्तों से लोग अफीम खाते आए हैं। आज बड़ी बेगम का मकान परिस्तान बना हुआ है। जिधर देखिए सजावट की बहार है। बेग में धमाचौकड़ी मचा रही है। जानी दूल्हा के यहां तो आज मीरासिनों की धूम है। कहां तो मियां आजाद को नाच गाने से इतनी चिढ़, रीड की मजाल क्या कोई डोमिनी घर के अंदर कदम रखने पाए। और आज सुनती हूं कि तबले पर थाप पड़ रही है और गजलें, ठुमरिया, टप्पे गाए जाते हैं। प्रिय पाठक, शास्त्रानुसार नायक और नायिका के संयोग के साथ ही कथा का अंत हो जाता है, इसलिए हम भी अब लेखनी को विश्राम देते हैं। पर कदाचित कुछ पाठकों को यह जानने की इच्छा होगी कि ख्वाजा साहब, रीड क्या हाल हुआ और मिस मीडा और मिस क्लारिसा पर क्या बीती। इन